17 मार्च दिन भर दिन गुरुवार, मैं हूं रेहान फतल। सुप्रीम कोर्ट का सतलज यमुना लिंक कनाल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। पंजाब सरकार ने नहर के लिए किसानों की जमीन लौटाई।
और कोर्ट का फैसला आने से पहले इस प्रकार की घोषणाएं करना, ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करना।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला के तहत डॉक्टर रमेश तामीरी बताएंगे, वामपंथी आंदोलन से कश्मीरी पंडितों का कैसे हुआ मोह भंग।
तेज बहादुर बान जम्मू कश्मीर सरकार में इंजीनियर थे और विचारों से वामपंथी थे। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे। एक किताब में उन्होंने डार्विन के सिद्धांत पर जिक्र किया था।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। बरसों से पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण बने सतलज यमुना लिंक कनाल यानी SYL के लिए निर्धारित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसे पंजाब सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस जमीन के अधिग्रहण को रद्द करते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने का फैसला किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। पठानकोट एयरबेस में चरमपंथी हमले की जांच के लिए बनाई गई पाकिस्तानी जांच टीम 27 मार्च को भारत आएगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। दोनों नेता सार्क देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए काठमांडू में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो सीरिया की सरकार का समर्थन करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़े तो चंद घंटों के अंदर सीरिया में अपनी सेना को खड़ा कर सकते हैं। सीरिया से लौटे रूसी सैनिकों के सामने दिए गए भाषण में पुतिन ने कहा कि उनकी वजह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नाटकीय बदलाव आया और इसी से शांति का रास्ता खुला। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ सहमति के बाद ही उन्होंने सीरिया से आंशिक रूप से रूसी सैनिक हटाए हैं। पुतिन ने कहा,
конечно, и впредь будем оказывать поддержку законному правительству Сирии.
बेशक हम सीरिया की मौजूदा सरकार का समर्थन करते रहेंगे और इस समर्थन में वित्तीय मदद, सैन्य साजो सामान की आपूर्ति, सीरियाई सैनिकों की ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और सैन्य अभियानों में की योजना में मदद भी शामिल है। ये थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इसराइली सेना का कहना है कि अधिकृत पश्चिमी तट पर एक इसराइली महिला को चाकू मारकर घायल करने वाले 2 फिलिस्तीनियों को इसराइली सैनिकों ने मार दिया है। सेना का कहना है कि ये घटना एरियल में इसराइली बस्ती के पास सड़क पर हुई। महिला का अस्पताल में इलाज हो रहा है। यूक्रेन में बाकी बची लेनिन की सबसे बड़ी प्रतिमा को गिरा दिया गया है। इसके लिए 2 दिनों तक चले अभियान में क्रेन से 20 मीटर ऊंचे स्मारक को सावधानी पूर्वक वहां से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। यूक्रेन में लेनिन की सभी प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, जो देश में मौजूद सोवियत अतीत के प्रतीकों को हटाने की सरकारी मुहिम का हिस्सा है। यूरोपीय संघ के नेताओं की आज ब्रसेल्स में बैठक हो रही है, जिसमें ग्रीस पहुंचने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए तुर्की के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बारे में होने वाली वार्ताएं खासी मुश्किल होंगी। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से पंजाब को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा के साथ इस मुद्दे पर उसका विवाद चल रहा था। मामला जहां सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था, उसी बीच पंजाब सरकार की कैबिनेट ने इस नहर के लिए ली गई किसानों की जमीन लौटाकर नहर को समतल कर देने का फैसला लिया है। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
5 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव और पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को नहर का रिसीवर नियुक्त किया है और ये भी कहा है कि ये तीनों ही इस मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पर अमल करवाने की व्यवस्था करें। इससे पहले हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पंजाब के मंत्रिमंडल के उस फैसले के बारे में बताया था जिसमें पंजाब की सरकार ने नहर को क्षतिग्रस्त करने और उसे समतल करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा से मिली सारी रकम को वापस करने का फैसला भी कर लिया। पंजाब के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का कहना था,
आज पंजाब दी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी ने बहुत हिस्टोरिक फैसला लिता। जिवें मुख्यमंत्री जी ने कहा सी कि पंजाब एक बूंद भी पानी साडे कोले वाधू नहीं है, ते जिहड़ा इन्नी देर दा एसवाईएल कनाल बनाउण दा जिहड़ा समस्या चल रही सी, रौला चल रहा सी, जिहड़ा नवा बिल बनाया, इहदे बिल ते पास होण दे बाद आ सारी जमीन जिहड़े ओह किसान सी जिन्हां तों लिती गई है और सारी जमीन वो किसानों वापस की जाएगी।
सतलज यमुना नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का सामना भी करना पड़ा है। राजनीतिक खींचातानी के बीच हरियाणा की सरकार के मंत्री अनिल विज का आरोप है कि पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं किया और मामला लंबित रहने के बावजूद इस तरह का आदेश जारी किया।
देखिए, जो कुछ पंजाब सरकार कर रही है, मामला आज सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें पंजाब खुद भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोर्ट का फैसला आने से पहले इस प्रकार की घोषणाएं करना ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करने के समान।
इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मी इसलिए भी तेज है क्योंकि ऐसी सूरत में हरियाणा ने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। ये विवाद 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ शुरू हुआ क्योंकि सतलज, रावी और ब्यास नदी के पानी का बंटवारा होना था। इसकी अधिसूचना को पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, फिर याचिका वापस भी ले ली। 1990 तक 750 करोड़ रुपए की लागत से नहर का एक बड़ा हिस्सा तैयार भी हो गया। वर्ष 2002 में पंजाब को नहर का बाकी का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया गया, मगर जल्द ही पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास कर लिया गया जिसे यूपीए की सरकार ने राष्ट्रपति की राय के लिए भेजा था। राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सौंप दिया था। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का हरियाणा सरकार को दिया गया अल्टीमेटम आज समाप्त हो रहा है। जाटों की धमकी को देखते हुए राज्य के संवेदनशील जिले में भारी संख्या में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उधर ये खबरें भी आ रही हैं कि मामले की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की है। मैंने थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ फोन कर स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से पूछा कि जाटों द्वारा दोबारा आंदोलन शुरू करने को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
सरकार ने तो इसको पूरी तरह गंभीरता से लिया। उन्होंने सारे जो डीसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स जिनको और स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बोलते हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अधिकार दे दिए हैं अगले तीन महीने तक, अगर कोई स्थिति ऐसी बने जिससे कि वो स्पेशल पावर्स रखें, अगर कोई सिचुएशन बनती है, सरकार पूरी तरह से इस मामले में थे। और करीब करीब 100 कंपनीज उनने और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मंगा ली हैं जिससे कि कोई स्थिति अगर ऐसी बने तो पहले से तैयारी रहे। लेकिन आज मेरी कुछ जाट लीडर्स से बात हो रही थी जिनने आंदोलन का कॉल दिया है, उन्होंने कहा है कि अब हमें कल सरकार ने न्योता दिया है 12 बजे जिसमें सरकार अपना जो सोच रही है वो हमारे साथ साझा करेगी। उसके बाद हम लौट के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और अपने जो आंदोलन का के लोग पूरा ढांचा है उन लोगों से हम बातचीत करके ये बताएंगे कि ये स्थिति है, आगे में क्या करना चाहिए। तो 21 तारीख को कोई रूपरेखा बनने की उम्मीद है। इसी बीच आज विधानसभा में ये एसवाईएल का मामला इतना उठ गया कि अब ये जो बिल लाना था आरक्षण से संबंधित वो बिल नहीं आ पाया। इसके दो कारण थे, एक तो एसवाईएल का मुद्दा बहुत गर्म हो गया और दूसरा ये कि कैबिनेट में, हरियाणा कैबिनेट में अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है कि हमें इसकी क्या प्रारूप रखना चाहिए।
और वैसे सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनका रुख क्या है इस पूरे मामले पर?
फिर से मैं दोबारा से जो आंदोलनकारी उन्हीं के नजरिए से बताने की कोशिश करूंगा। उनमें से मेरी एक ग्रुप से बात हुई जो अभी आंदोलन नहीं कर रहा है, जिसने अभी कोई अल्टीमेटम दिया है, उनका कहना है कि हमें इंतजार करना होगा और हमें भरोसा है सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया है उसे वो निभाएगी, जिसमें कि वो पिछड़े के अंतर्गत अपना आरक्षण मांग रहे हैं। पिछड़े में वो एक नई कैटेगरी सी क्लास बना के कोशिश कर रहे हैं कि जाटों को और तीन और जातियों को उसमें शामिल करके उनको 10% रिजर्वेशन दिया जा सके।
कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो जो पुराना आंदोलन हुआ था उसको किसी भी हालत में दोहरवाना नहीं चाहेंगे हरियाणा में।
नहीं, ये तो जी प्रधानमंत्री समझ सकते हैं प्रधानमंत्री की चिंता, लेकिन ये तो पूरा हरियाणा उसके बाद जो उनका सामाजिक ताना वाना टूटा है, तो ये हरियाणा शायद दोबारा से अगर ऐसा कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, काफी काफी खराब हालत हो सकती है हरियाणा की।
ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
सबूतों की कमी के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में हिमायत बेग की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। पुणे की सत्र अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य बेग को धमाकों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बेग ने अपील की थी, वो पहले ही 5 साल की सजा काट चुके हैं। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
वर्ष 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी हिमायत बेग की फांसी की सजा गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 120B से बरी कर दिया, लेकिन उनके घर में विस्फोटक पदार्थ और RDX मिलने की वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को शाम 7:30 के करीब बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी और एक इटालियन महिला, 2 सूदानी तथा एक ईरानी छात्र समेत 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में खबाद हाउस तथा ओशो आश्रम के करीब स्थित इस बेकरी में हुए धमाके ने सारे शहर तथा राज्य को दहला दिया था। महाराष्ट्र ATS ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए हिमायत बेग को 7 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ पुणे के सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दायर की। सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के बाद बेग को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। सेशंस कोर्ट के फैसले को बेग ने मुंबई हाईकोर्ट में उच्च चुनौती दी थी। गुरुवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई और हिमायत बेग की फांसी रद्द कर दी गई, लेकिन घर में विस्फोटक रखने के आरोप में और उन विस्फोटकों को धमाके में इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बारे में हमने हिमायत बेग के वकील महमूद प्राचा से बात की।
कोर्ट में उसके लिए जजमेंट आई है, आज जजमेंट अनाउंस कर दी गई है। सो He has been acquitted of all charges of terrorism. जितने भी UAP के charges थे, all have been quashed. Unlawful Activities Prevention Act. These are the terrorism charges, na? Instead of TADA, now it's UAP. All charges of murder, attempt to murder have been quashed. राष्ट्रद्रोह के खिलाफ के लिए जो वो लगाए थे charges, उसमें conviction हुई थी नीचे से, वो मतलब सजा हुई थी, उसको हटा दिया, खारिज कर दिया।
ये थे महमूद प्राचा। हालांकि इस फैसले का स्वागत हो रहा है, हिमायत बेग की ओर से इस फैसले के एक हिस्से को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मुंबई से बीबीसी हिंदी के लिए अश्विन अघोर।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनेशियो लुला डी सिल्वा मौजूदा राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ के नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। सिल्वा के खिलाफ ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोबास में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है। लुला की नियुक्ति के बाद ब्राजील के कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति रुसेफ का कहना है कि लुला की नियुक्ति की वजह उन्हें जांच से बचाना नहीं है। लुला ने इसी हफ्ते ऐलान किया था कि वो 2018 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ अमर शर्मा।
ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दिल्मा रुसेफ की सरकार में पूर्व राष्ट्रपति को कैबिनेट सदस्य बनाने पर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा हुए लोगों ने कहा कि वे सरकार की हरकतों से आजीज आ चुके हैं।
prisão, cansada, cansada, não sou oposição, eu sou uma brasileira.
Lula को मंत्रालय नहीं जेल भेजो, मैं तंग आ गई हूँ. मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं एक ब्राज़ीली हूँ जो अब इतने भ्रष्टाचार से थक चुकी हूँ. चोरी, भ्रष्टाचार, ये तो तख्ता पलट है. हम कोई जोकर नहीं है. ब्राज़ील इन सब के बिना ज्यादा अच्छा है.
लुला की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद संघीय अदालत के जज सर्गियो मोरो ने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ लुला डी सिल्वा को मुकदमे से बचाना चाहती हैं. ब्राज़ील की राष्ट्रपति रूसेफ ने लुला डी सिल्वा की नियुक्ति का बचाव किया है. रूसेफ खुद संसद की महाभियोग की कार्यवाही का सामना कर रही हैं. दिल्मा रूसेफ का कहना है कि लुला की नियुक्ति की वजह उन्हें जांच से बचाना नहीं है और पूर्व राष्ट्रपति लुला पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है. रूसेफ ने कहा कि लुला एक कुशल राजनीतिक मध्यस्थ और अनुभवी नेता हैं जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि लुला के 8 साल के कार्यकाल के दौरान ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित आर्थिक वृद्धि और संपत्ति का पुनर्वितरण किया गया था.
Vamos falar a verdade, a vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo. Tem gente que não quer.
हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि मेरी सरकार में लूला के आने से सरकार मजबूत होगी और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं चाहते. लूला और मेरा संबंध ताकतवर लोगों के बीच का संबंध नहीं है बल्कि ये उन दोनों लोगों के बीच का एक मजबूत रिश्ता है जो मिलकर एक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं. लुला लौट रहे हैं. हम मिलकर प्रगति, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएंगे और महंगाई को काबू करेंगे.
ये थे दिल्मा रूसेफ के शब्द. ब्राज़ील के कानून के मुताबिक केवल सुप्रीम कोर्ट में ही कैबिनेट सदस्यों से जुड़े मामले पेश किए जा सकते हैं. लुला पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भ्रष्टाचार के आरोप है. इस घोटाले से जुड़ी जाँच को ऑपरेशन लावा जाटो, कार वॉश कहा जाता है, जिसे मार्च 2014 में जज सर्गियो मोरो ने शुरू कराया था. करीब 2 हफ्ते पहले लुला से ऑपरेशन कार वॉश के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूछताछ की गई थी. उनका कहना था कि ये आरोप उन पर इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें 2018 में फिर राष्ट्रपति बनने से रोका जा सके. लुला ने अभी ऐलान किया था कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे.
ब्राज़ील में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ये बीबीसी है. आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ. इनका भी कश्मीर श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं अपने घरों से उजड़े कश्मीरी पंडितों के पोस्टकार्ड. अब तक आप सुन चुके हैं पलायन से पहले के श्रीनगर में बड़े होने का अनुभव, उस पीढ़ी की बात जो कश्मीर से बाहर पैदा हुई, और कश्मीर के एक हिंदी साहित्यकार का बयान. लीजिए आज प्रस्तुत है जम्मू में रह रहे डॉक्टर रमेश तामीरी का पोस्टकार्ड जिसमें उन्होंने बताया है कि वामपंथी आंदोलन से कश्मीरी पंडितों का मोह भंग कैसे हुआ.
अस्सी का दशक आधा बीतते बीतते कश्मीरी लड़कों के सीमा पार जाकर वहां के ट्रेनिंग कैंपों में हथियार चलाने और फौजी भीतरघात सीखने की खबरें आने लगी थीं. इसके बाद भारत के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ और पंडितों के खिलाफ कट्टरवादी अभियान शुरू हो गया, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारें खामोश रहीं. पीएन जलाली और पीर गयासुद्दीन नाम के कम्युनिस्ट पत्रकारों ने इसके खिलाफ उदारवादी सोच रखने वालों को एकजुट करना शुरू किया. राष्ट्र स्तर पर वामपंथी नेतृत्व को भी इन बदलावों के बारे में बताया गया, लेकिन इन सभी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया. कश्मीर में प्रगतिशील साहित्यिक और राजनीतिक आंदोलन को परवान चढ़ाने में पंडितों की महत्वपूर्ण भूमिका थी. मेरे कई रिश्तेदार वामपंथी आंदोलन में सक्रिय थे. मैं खुद वामपंथी विचारों से प्रभावित था. 1978 से ही मैं और मेरे पंडित और मुसलमान दोस्त हर रविवार को देश दुनिया के विषयों पर, साहित्य पर और मार्क्सवाद पर बातचीत किया करते थे. दोनों समुदायों के कामरेडों में कट्टरवाद और अलगाववाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के खिलाफ एक मत हुआ करता था. पर स्थितियां बदलने लगीं. मुझे याद है कि ट्रेड यूनियन नेता हृदयनाथ वांचू बटमालू में सोवियत संघ की किताबों की दुकान चलाते थे और नगरपालिका कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे. एक रविवार को कुछ नौजवानों ने हमसे विवाद शुरू कर दिया. ये सभी एक इस्लामी संगठन से जुड़े लोग थे. उनका इल्ज़ाम था कि वांचू समाज को बर्बाद कर रहे हैं और नौजवानों को कम्युनिस्ट बना रहे हैं. तेज बहादुर बान जम्मू कश्मीर सरकार में इंजीनियर थे और विचारों से वामपंथी थे. उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे.
एक किताब में उन्होंने डार्विन के सिद्धांत पर जिक्र किया था। ये किताब 20 साल पहले छपी थी, पर जमात इस्लामी ने हाइतोबा मचानी शुरू की और सरकार पर बान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। बान को सरकारी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिसके बाद ये केस बंद किया गया। इन घटनाओं के बाद हमने रविवार को मिल बैठकर बात करना बंद कर दिया और बाहर निकलना भी कम कर दिया। दिसंबर 1999 में वामपंथी राजनीति करने वालों को सीधी धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल सत्तार रंजूर की हत्या कर दी गई। हालात खराब होने पर कई लोग घाटी छोड़कर जम्मू चले गए। जो बचे रहे वो या तो खामोश हो गए या उन्हें पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई। इसके बावजूद देश में वामपंथी पार्टियों का नेतृत्व अलगाववादी आंदोलन के कारण पैदा हुए इस खतरे को भांपने में फेल हुआ। इसके सांप्रदायिक पक्ष पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने ओएन त्रिशूल और ऋषदेव जैसे पार्टी समर्थकों से कह दिया कि पंडितों का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद त्रिशूल आदि कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली आकर अलगाववाद के खिलाफ पर्चे छापने शुरू कर दिए। कश्मीरी पंडितों का वामपंथी आंदोलन से मोह भंग हो चुका था।
ये थे डॉक्टर रमेश तामीरी। इस पोस्टकार्ड को आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह नमस्कार भारत में। आज गुरुवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश जोशी।
आपकी राय नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति जी, आप नारंगी कुर्ते में आज हैं, मैं अपने श्रोता को बता दूं, लेकिन चिट्ठियां आपके आमने सामने जितनी भी रखी हुई हैं वो हैं सफेद रंग के कागज पे। ईमेल ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है।
जी हाँ, और ये ज्यादातर ईमेल जो हमारी नई श्रृंखला है कश्मीरी पंडितों के पलायन से संबंधित,
इनका भी कश्मीर, जी हाँ, जो आजकल लगातार हमारे श्रोता सुन रहे हैं
उसी पर ज्यादातर ईमेल आए हैं। हमारे जो श्रोता है मंटू कुमार, उन्होंने मोतिहारी बिहार से लिखा है और इनकी जो शब्दावली है वो काफी अहम है। लिखते हैं कि अजीब विडंबना है कि बिस्तर पर चाय पीते हुए उन लोगों की कहानी सुनी जाए जो अपने घर से बेदखल कर दिए गए हैं। खुद के घर से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में और कोई जगह नहीं। पीछे छूट गए वक्त में जो गहरे घाव दबे हैं वो बीबीसी हिंदी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचे हैं। शुक्रिया कह रहे हैं राहुल पंडिता, राधिका कौर, डॉक्टर अग्निशेखर और बीबीसी हिंदी का।
जी, अभी ये श्रृंखला जारी है, दो और लेखक अपनी बात कहेंगे। उसके बाद जुबैर अहमद जो हमारे संवाददाता हैं वो कश्मीर से लौट के आए हैं, वहाँ उन्होंने देखा है कि कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है, तो उस पर आप कार्यक्रम आगे सुनते रहेंगे।
और जो हमारे नियमित श्रोता हैं जीशान नैयर, उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों पर जो सीरीज चल रही है वो इन्हें काफ़ी पसंद आ रही है। इसके अलावा हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से, जो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो विशेष श्रृंखला आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके पहले भाग में राहुल पंडिता और अगले भाग में डॉक्टर राधिका कौल की बात सुनी। कहते हैं कि उन्हें लगता है कि रांची, दिल्ली और अमेरिका में रहने के बाद राधिका कौल खुले समाज में रहकर कश्मीर जैसे बंद समाज में रहना शायद पसंद नहीं करेंगी।
जंग बहादुर सिंह जी, ये तो खैर कहना बड़ा मुश्किल है कि कश्मीरी समाज बंद है या खुला है, क्योंकि जो उस समाज में पैदा हुआ पला बढ़ा उसी को ये फैसला करने दें।
उन्होंने एक और बात भी लिखी है कि कश्मीरी पंडितों पर ध्यान देने के लिए बीबीसी का धन्यवाद, क्योंकि जिस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था पंडितों को वापस उनके घर में बसाने का, 2 साल के बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ है।
जी,
इसके अलावा एक और ईमेल सुरेश अग्रवाल का कैसिंगा ओडिशा से, इन्होंने भी कहा कि इनका भी कश्मीर की जो कड़ियां हैं वो इन्हें बहुत पसंद आ रही हैं। राहुल पंडिता और राधिका कौल की जुबानी इन्होंने बात सुनी, उनके दर्द को स्पष्ट तौर पर महसूस किया जा सकता है, ऐसा लिखते हैं। अपने ही देश में खानाबदोश का सा जीवन जीने को विवश होना पड़े से ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। 4 दशक होने को आए शक्तिशाली भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पंडितों की घर वापसी नहीं हो सकती।
जी हाँ,
शैलेंद्र शर्मा का ईमेल भी इसी के बारे में है। कहते हैं कि आपने इनका भी कश्मीर कार्यक्रम शुरू किया है, वो बहुत ही उत्तम है। उम्मीद है कि इसमें आगे कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी मिलेगी, चर्चा होगी और पिछली बार के इंडिया बुल की तारीफ कर रहे हैं।
इनका नाम क्या है?
इनका नाम है शैलेंद्र शर्मा। कहां
से चिट्ठी भेजी है? ये नहीं
लिखा।
अच्छा भाई, जब आप ईमेल जब भेजते हैं तो जरूर अपना गांव या शहर या जिले का नाम लिख दें, ताकि हमें आसानी हो कि ये बता दें दूसरे श्रोताओं को कि आपकी चिट्ठी कहां से आई है।
करीम आसिफ की चिट्ठी है, इन्होंने लिखा है सीतामढ़ी बिहार से, और कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित राधिका कौल की चिट्ठी वास्तव में उजड़े लोगों की दर्द भरी कहानी है। कहते हैं कि धार्मिक उन्माद, अंधराष्ट्रवाद या फिर निरंकुश शासन, इनका महज एक ही मकसद होता है, मानवता को लहूलुहान करना।
और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने एक शेर भी लिखा है, लगे हाथों आप उसको भी पढ़ डालें।
जी हाँ, हम बांसुरी पे मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ऐ जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा।
रुतबा रहे बाला तेरा, यानी रुतबा तेरा हमेशा ऊंचा रहे।
रजनीश तिवारी ने विशाखापट्टनम से लिखा है, ये कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का अलगाव है वो कहीं ना कहीं एक वजह है हिंदू राष्ट्रवाद यानी हिंदू नेशनलिज्म के दोबारा देश में उफान पर आने की वजह है। और कहते हैं कि क्योंकि हर संप्रदाय को हक है कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और विरासत बचाने का,
इस वजह से कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है उस पर बहुत सारे हमारे और भी श्रोताओं ने चिट्ठियां भेजी हैं। सबको तो शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे श्रोता अभी पोस्ट कार्ड के जरिए, डाक के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला अभी चल रही है। मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे यही है और कहना यही है कि समाज में हमारे जो कुछ होता है हम उसको बिल्कुल एक आईने की तरह परावर्तित करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। कई बार कोई सूरत, कोई तस्वीर बहुत ही विद्रूप लगती है, जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हमें लगता है कि बीबीसी उसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल बीबीसी जिम्मेदार नहीं है, समाज में जो कुछ हो रहा है हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। तस्वीर ही अगर विद्रूप है, तस्वीर अगर खूबसूरत है, वही उसी शेप में, उसी शक्ल में आप तक पहुंचेगी। तो आप समझ गए होंगे कश्मीरी पंडितों पर ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है ये अभी जारी है। जैसा कि मैंने कहा, जुबैर अहमद हमारे संवाददाता कश्मीर से लौटे हैं, उनकी रिपोर्टें आएंगी और एक कार्यक्रम भी बीच में होगा जिसमें हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, तो उस सब का इंतज़ार कीजिए। अब इसके बाद हमारे पास शायद अब इतना वक्त नहीं है कि हम श्रोताओं की दूसरी चिट्ठी ले सकें, तो चलते चलते पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और T20 विश्व कप में इस समय मुकाबला होता हुआ श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, रजत चान्ना उस पर नजर बनाए हुए हैं। बताइए रजत, क्या है स्थिति?
जी, अफगानिस्तान इस वक्त एक विकेट के नुकसान पर 30 रन बनाए हुए है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ICC वर्ल्ड T20 के सुपर 10 मुकाबले में कोलकाता में जारी ईडन गेम्स मुकाबले में इसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, पर कप्तान शहजाद मोहम्मदी 8 रन पर ही आउट हो गए। शहजाद मोहम्मदी को श्रीलंकाई कप्तान एंजिलो मैथ्यूज ने आउट कर दिया। सलामी बल्लेबाज नूर अली और अस्कर स्टैनिस गई क्रीज पर जमे हुए हैं। वहीं महिला वर्ल्ड T20 में बेंगलुरु में हुए आज मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 36 रनों से मात दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चार्लोटे एडवर्स ने 60 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसकी मदद से इंग्लैंड महिला टीम ने 20 ओवर में 153 रन बनाए, लेकिन जवाब में बांग्लादेश की महिला टीम 6 विकेट के नुकसान पर 117 रन ही बना पाई। बांग्लादेश के लिए निगार सुल्तान ने सबसे अधिक 35 रन बनाए। और बैडमिंटन में दो बार की चैंपियन और शीर्षवरीय साइना नेहवाल ने किया एक शानदार प्रदर्शन। साइना नेहवाल ने स्विस ओपन ग्रोप्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और साइना ने जर्मनी की करीन शांसे को 33 मिनट में 21-7, 21-15 से पराजित कर सफलता हासिल की। रिहान,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत। और सभा की समाप्ति से पहले एक नज़र विश्व समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। बरसों से पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण बने सतलुज यमुना लिंक SYL के लिए निर्धारित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पठानकोट में चरमपंथी हमले की जांच के लिए बनाई गई पाकिस्तानी जांच टीम 27 मार्च को भारत आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो सीरिया की सरकार का समर्थन करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़े तो चंद घंटों के अंदर सीरिया में अपनी सेना को खड़ा कर सकते हैं। यूक्रेन में बाकी बची लेनिन की सबसे बड़ी प्रतिमा को गिरा दिया गया है। इसके लिए दो दिन तक चले अभियान में क्रेन ने 20 मीटर ऊंचे स्मारक को सावधानीपूर्वक वहां से हटाकर रख दिया। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।